ये आकाशवाणी है, अब आप गौरव राघव से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों के स्वास्थ्य पर राष्ट्र की प्रगति निर्भर है, इसलिए सरकार स्वास्थ्य सेवा के आधार को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री ने कल धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कहा कि इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ निर्धारित कर नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रमुखता दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 12,850 करोड़ रुपये की लागत की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि वंचितों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत वंचितों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में से 5,00,000 रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। श्री मोदी ने भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स अस्पतालों में सुविधा सेवा का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में 5 नर्सिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कल बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार विषय पर एक समारोह आयोजित किया गया। इसके तहत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने ढाका में सितार संगीत के बाद आयुर्वेद पर व्याख्यान और प्रदर्शनी स्टालों का आयोजन किया। इस अवसर पर बांग्लादेश में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे ने आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और जानकारी साझा करने के महत्व पर जोर दिया। उच्चायुक्त ने कहा कि आयुर्वेद एक प्राचीन उपचार विज्ञान और जीवन शैली है जो भारत की सभ्यताओं की जड़ों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बेहतर करना और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। श्री मोदी आरंभ 6.2 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षकों को भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोडमैप है। 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य के सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस बीच झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी कल समाप्त हो गई। इस चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आगाह किया कि वे चुनाव और मतगणना जैसे संवेदनशील मामलों में बेतुके और सनसनीखेज आरोप न लगाएं। तेल विपणन कंपनियों ओएमसी ने पेट्रोल पंप डीलरों को दे डीलर कमीशन में वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही पेट्रोल और डीजल डिपो से दूरदराज के स्थानों पर स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर राज्य माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने के निर्णय की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओएमसी के इस निर्णय का स्वागत किया है, जिसके परिणामस्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। चुनाव वाले राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णय बाद में लागू किया जाएगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। अयोध्या में आज होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सरयू नदी के घाटों पर 28,00,000 दीपों की व्यवस्था की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।